नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करते हुए बातचीत और कूटनीति पर बल दिया। अमेरिका ने कहा, संघर्ष विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए खुलने को तैयार। ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स में करीब 3000 अंक का उछाल और निफ्टी में 874 अंक की बढ़त। और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी और होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार का प्रवाह जारी रहेगा।
भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। हम शांति के हर पहल का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पश्चिम एशिया की यह पहल यूक्रेन में भी शांति बहाल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।
सरकार ने बताया है कि देश भर की खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार कस्सी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और कोयले का पर्याप्त भंडार बनाए रखा गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में LPG, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
घरेलू LPG की सप्लाई नॉर्मल है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी DAC कोड के साथ हो रही है। और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि मंत्रालय ने 700 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। अमेरिका ने कहा है कि युद्ध विराम के अंतर्गत होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू होने वाला है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि युद्ध विराम कायम रहेगा और आगे की राजनयिक गतिविधियों के लिए ये एक अवसर प्रदान करेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियार की आपूर्ति करने वाले देशों पर 50% शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। ये शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले श्री ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एक समझौते के अंतर्गत अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर सहमत हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष विराम समझौते के बाद खाड़ी देशों के हालात में राहत देखी जा रही है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की घोषणा से ऊर्जा बाजारों और समुद्री व्यापारिक मार्गों को राहत मिली है, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। होर्मुज जल डमरू मध्य अभी आंशिक रूप से ही चालू है। 100 से अधिक टैंकर फंसे हुए हैं, बीमा कंपनियां सतर्क हैं और ऊर्जा कारोबारी भू राजनीतिक जोखिम को ध्यान में रखते हुए कीमतों का आकलन कर रहे हैं। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती न होने के कारण अमेरिका युद्ध विराम अनुपालन की निगरानी के लिए पूरी तरह उपग्रह और समुद्री निगरानी पर निर्भर है। ईरान के खार्ग द्वीप निर्यात टर्मिनल पर भी सबकी नजर है, जहां हाल ही में हुए हमलों में भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के बाद दक्षिण कोरिया ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे दक्षिण कोरियाई जहाजों को सुरक्षित निकालने में सहायता करने का वायदा किया है। अधिकारियों के अनुसार दक्षिण कोरिया होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे कोरियाई तेल टैंकरों की सुरक्षित और त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में 7 तेल टैंकर मौजूद हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीय ध्वज वाहक शामिल हैं, जो कोरियाई तेल शोधन कारखानों के लिए तेल पहुंचा रहे हैं। इन जहाजों में 14 मिलियन बैरल कच्चा तेल है। ये दक्षिण कोरिया की 5 दिन की तेल खपत के बराबर है। इंडोनेशिया ने अमरीका और ईरान के बीच घोषित संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए इसे तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता यवून मिवेंग कोंग ने कहा कि इंडोनेशिया इसे एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखता है और सभी पक्षों से आग्रह करता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। ईरान और अमेरिका इसराइल में संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आज दोपहर लेबनान के बेरूत शहर की कई घनी आबादी वाले व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों पर इसराइल ने हमले किए। यह हमला इसराइल की प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष विराम लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ चल रहे युद्ध पर लागू नहीं होता है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को अपने दूतावास के समन्वय और अधिकारियों द्वारा सुझाए गए मार्गों का उपयोग करते हुए शीघ्र ही ईरान छोड़ने की सलाह दी है। भारत और तुर्की ने आज नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श बैठक के 12वें दौर के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की। ये चर्चा व्यापार और निवेश, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, ऊर्जा, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग, जनसंबंधों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रही। युद्ध विराम की घोषणा के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखी गई। वहीं वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। विस्तृत आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 2,946 अंक बढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 874 अंक बढ़कर 23,997 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के तुलना में रुपया 40 पैसे मजबूत होकर 92.58 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल के कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। ब्रेंट के दाम लगभग 16.5% घटकर $91.27 प्रति बैरल पर आ गए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 2 साल से भी कम समय में 1,000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक तैयार किया है। ये विश्व के सबसे लंबे नेटवर्कों में से एक है। एक स्टार्टअप द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया ये नेटवर्क 8 वर्षों में 2,000 किलोमीटर के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मानव चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के तहत ओरियन अंतरिक्ष यान के चालक दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के साथ पहली बार सीधे संपर्क स्थापित कर एक और इतिहास रच दिया है। पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग लिंग चिंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय ने गुयेन हाई डांग को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। आयुष शेट्टी ने चीन के ली शी फेंग को हराकर, वहीं लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में भारत की मालविका बंसोड और तन्वी शर्मा भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करते हुए बातचीत और कूटनीति पर बल दिया। अमेरिका ने कहा, संघर्ष विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए खुलने को तैयार। ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स में करीब 3,000 अंक का उछाल और निफ्टी में 874 अंक की बढ़त। और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।